पौधों में परिवहन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि पौधे जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों और पानी को जड़ों से पत्तियों की युक्तियों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। पौधों में परिवहन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपने जीवन के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों और पानी को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। सभी जीवों को पानी, भोजन, खनिज, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। वे कोशिकाओं की वृद्धि और श्वसन में सहायता करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से निष्कासन के लिए उत्सर्जन अंगों में ले जाया जाता है। पौधों और जानवरों में पदार्थों के परिवहन के लिए अलग अलग अंग और प्रक्रियाएं होती हैं। जानवरों में परिवहन परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का संयुक्त प्रयास है। रक्त वो तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं में बहता है और पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं, धमनियां और शिराएं। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को शरीर के सभी भागों से शिराओं के माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जाता है। हृदय मुख्य अंग है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करता है। कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में अतिरिक्त शर्करा, अतिरिक्त लवण, अपाच्य अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ हैं। अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम जैसे निचले जीव कोशिका झिल्ल के माध्यम से प्रसार की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं क्योंकि उनमें विशेष उत्सर्जन अंगों का अभाव होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग शामिल हैं। गुर्दे मुख्य उत्सर्जन अंग हैं जो शरीर में पानी और खनिजों के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। वे रक्त में खनिजों को अवशोषित करते हैं और मूत्र के रूप में रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन और परिसंचरण में मदद करता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हृदय, फेफड़े और रक्त वाहिकाएं, धमनियां और नसें शामिल हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र। यह अकशेरुकी जीवों में पाया जाने वाला तंत्र है। इसमें शरीर का तरल पदार्थ गुहाओं में बहता है और रक्त संचार के लिए रक्त वाहिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। बंद संचार प्रणाली। इस प्रणाली में हृदय मौजूद होता है जो पंपिंग अंग है, जो ऊतकों और अंगों तक पहुंचने वाली वाहिकाओं में रक्त पंप करता है। गैसों का आदान प्रदान केशिकाओं और ऊतकों के बीच होता है, जैसा कि मनुष्यों और अन्य जानवरों के मामले में होता है। मनुष्यों में हृदय पंप करने वाला अंग है जो नसों के माध्यम से शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। इसे ऑक्सीजन से फेफड़ों में भेजता है और धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है। इसमें दो प्रकार के परिसंचरण होते हैं, प्रणालीगत जिसमें रक्त शरीर के सब हिस्सों से आपूर्ति और प्राप्त किया जाता है, और फुफ्फुसीय जिसमें रक्त ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों से भेजा और प्राप्त किया जाता है। पौधों में परिवहन विभिन्न उद्देश्यों के लिए पौधे के भीतर पानी, आवश्यक पोषक तत्वों, गैसों और उत्सर्जन उत्पादों को प्रसारित करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संवहनी ऊतक पौधों में परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चूषण बल पौधे में पानी और खनिजों के परिवहन में मदद करता है। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो जड़ के बालों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी के संचालन में शामिल होता है। फ्लोएम में परिवहन द्विदिशात्मक होता है। फ्लोएम की सहायता से भोजन के अणुओं को आवश्यक क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। जड़ के बाल मिट्टी से पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं और रिक्तिकाओं में जमा करते हैं। ये पानी पौधों द्वारा चूषण बल द्वारा अवशोषित किया जाता है। पौधों में अतिरिक्त पानी पत्तियों में मौजूद रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प के रूप में नष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तैयार खाद्य पदार्थ फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अतिरिक्त भोजन पौधे के भंडारण अंगों में जमा हो जाता है। जाइलम ऊतक पानी को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाता है। जड़ के बाल मिट्टी से पानी लेते हैं जिसे बाद में ऊतक जाइलम के माध्यम से परासरण द्वारा पत्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। पौधों में जाइलम कोशिकाओं के माध्यम से खनिज और पानी को मिट्टी से पौधों तक ले जाया जाता है। मिट्टी में मौजूद लवण जड़ों द्वारा अवशोषित होते हैं और बादमे जाइलम के माध्यम से पानी के साथ ऊपर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तने, जड़ों और पत्तियों सभी में जाइलम कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, जो एक संवाहक चैनल बनाती हैं जो पौधे के सभी वर्गों तक पहुंचती है। आयन मिट्टी से जड़ कोशिकाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जड़ों और मिट्टी के बीच आयन सांद्रता में अंतर होता है। परिणामस्वरूप जाइलम को निरंतर जल प्रवाह प्राप्त होता है। इन दो मार्गों को स्वायत्त रूप से समन्वित निर्देशन सिलेंडर के रूप में विकसित किया गया है। जाइलम ये गंदगी से प्राप्त पानी और खनिजों को स्थानांतरित करता है। जाइलम ऊतक के श्वसनीय घटक विशेष जल संवाहक कोशिकाओं का एक समूह है। जाइलम का निर्माण तब शुरू होता है जब जड़ और अंकुर के सिरे की कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक जाइलम बनता है। द्वितीयक जाइलम लकड़ी के पौधों में अधिकांश परिपक्व तने या जड़ का निर्माण करता है और ये तब विकसित होता है जब पौधा परिधि में बढ़ता है और मुख्य जाइलम ऊतकों के चारों ओर नए जाइलम की एक अंगूठी बनाता है। जाइलम के तत्व ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स जाइलम के चपटे पतले सिरे वाली लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। ट्रैकिड्स का मुख्य कार्य पानी के परिवहन के लिए खोखली जुड़ी कोशिकाओं का एक नेटवर्क प्रदान करना है। वे अपनी दीवार में विभिन्न प्रकार की मोटाई विकसित करके यांत्रिक सहायता भी प्रदान करते हैं। जाइलम वाहिकाएं। जाइलम वाहिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती हैं। वे ट्रैकिड्स से अधिक चौड़े होते हैं। उनकी कोशिका दीवारें कठोर, मोटी और लिग्नाइफाइड होती हैं। जाइलम वाहिकाओं का मुख्य कार्य जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना है। जाइलम पैरेन्काइमा इनमें जीवित कोशिकाएं होती हैं और जाइलम के संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य पौधे के शरीर में भोजन का भंडारण करना है। वे पानी और खनिजों के संचालन में भी मदद करते हैं। जाइलम फाइबर। वे जाइलम के संरचनात्मक घटक के रूप में भी कार्य करते हैं। वे मुख्य रूप से पौधे को सहारा देने का कार्य करते हैं। फ्लोएम के तत्व छलनी ट्यूब। छलनी ट्यूब तत्व कोशिकाओं के बीच सामग्री के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं। वे पौधे के शरीर में शर्करा और पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करते हैं। सहयोगी कोशिकाएं। सहयोगी कोशिकाओं में एक केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य होता है। वे छलनी ट्यूब के लिए एक साथी के रूप में कार्य करते हैं। फ्लोइंग पैरेन्काइमा। फ्लोइंग पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना है। फ्लोइंग फाइबर। फ्लोइंग फाइबर पौधे को सहारा प्रदान करते हैं और खड़े रहते हैं। ये स्टार्च जैसे यौगिकों को भी संग्रहित करता है। भोजन और विभिन्न पदार्थों की गति छलनी नलिकाओं में सन्निहित मित्र कोशिकाओं की सहायता से ऊर्ध्वाधर और अवरोही दोनों तरीकों से होती है। अभ्यास। उच्च संगठित पौधों में परिवहन प्रणाली के घटक क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है? जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन के बीच क्या अंतर है? परिसंचरण तंत्र द्वारा परिवहन किए जाने वाले पदार्थ किस प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दो प्रकार की परिसंचरण प्रणालियां कौन सी हैं? उनमें से प्रत्येक पर संक्षिप्त जानकारी दे। खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? दोहरा परिसंचरण क्या है?